महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था। एक दिन भिक्षा लेने वो किसी गांव में गया। एक घर के सामने आया, मन में संकल्प आया कि कोई युवती आ जाए भिक्षा लेकर, तो देखा कि वास्तव में एक युवती भिक्षा पात्र लेकर बाहर आई। भिक्षा लेते समय संकल्प आया कि क्यों ना ये मुझे थोड़े समय के लिए अंदर बुला ले। इतना सोचा ही था कि उस स्त्री ने उसे अपने घर में आमंत्रित किया। घर में बैठा ही था तो संकल्प आया, कितना अगर अच्छा होता कि ये महिला मुझे भोजन के लिए ही पूछे। सोचा ही था कि उस युवती ने पूछा, भंते आज आप भोजन यही कीजिए। भोजन जब पूरा हुआ, उस सन्यासी युवक के मन में संकल्प आया कि क्यों ना आज रात यहीं रुक जाऊं। स्त्री ने कहा कि भंते रात बहुत हो गई है, क्यों ना आज आप यहीं रुक जाते। जब सोने गया, युवक सन्यासी के मन में संकल्प आया उस स्त्री को स्पर्श करने का, और जैसे ही संकल्प आया उस स्त्री ने कहा, खबरदार अगर संकल्प भी किया मुझे स्पर्श करने का तो भस्म हो जाओगे। पहले उसे लगा था जो हो रहा है संयोगवश हो रहा है। उसने सोचा था कि जो घटनाएं हो रही है वो अपने आप हो रही है, पर अब उसे लगा कि यह स्त्री तो मेरे सभी विचारों को पढ़ रही है। उस स्त्री ने कहा, मैं तपस्विनी हूं। इतना सुना और वो सन्यासी भयभीत हो गया और भागा वहां से बुद्ध के पास और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? उसने सुनाया, ये हुआ। उसने पूछा, मैं क्या प्रायश्चित करूं, उस स्त्री ने कैसे यह जान लिया? बहुत तो दिव्य तपस्विनी थी। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसका एक प्रायश्चित है, और प्रायश्चित है कि तुम उसी घर में दोबारा भिक्षा लेने जाओ। उसने कहा कि मैं सभी घर में जा सकता हूं, पर अब फिर से उस घर में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने वो सारे संकल्प पढ़ लिए जो मेरे मानस पटल पर उठे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहीं जाना है, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। पहली बार भी वो इसी स्त्री के घर गया था, इस बार भी वो स्त्री के घर के सामने जाकर द्वार पर खड़ा हुआ और भिक्षा मांगने लगा। परंतु अब उसके पास कुछ और ज्ञान है। अब एक एक संकल्प जो उठ रहा है मन में उसके प्रति सजग है, सचेत है। एक एक संकल्प को वो देख रहा है, क्योंकि उसे पता है मेरे मन में जो संकल्प उदय हो रहे हैं सामने वाला उसे पढ़ रहा है। स्त्री उसे अंदर बुलाती है, अपने एक एक विचार पर उसका क्या है, किसका पहरा? बाबा के शब्दों में अटेंशन का पहरा है, वो बैठ रहा है तो भी सोच रहा है, ऐसा कोई संकल्प तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। एक एक संकल्प में पवित्रता समाई है। जो वासना पिछली बार अनायास ही उठी थी, अब वो समाप्त हो चुकी है। एक एक संकल्प जो उठ रहा है उसको वो देख रहा है, केवल देख नहीं रहा है, जांच रहा है, पड़ताल कर रहा है, सोच रहा है ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संपूर्ण जागरण की अवस्था है और वो देखता है कि वो वहां रुका, वहां पर बैठा, वहां पर भोजन किया और विदा होकर आ भी गया, और अब उसके मन में जो आनंद है उसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि अभी उसे जीत का अनुभव हो रहा है, अभी उसे विजय की अनुभूति हो रही है। कौन सी विजय हुई है, ये मेरा प्रश्न है आप सबसे। आज की मुरली में बाबा ने दो शब्दों में विजय कहा है, श्रीमत से विजय है और दूसरा शब्द उसी के आगे निश्चय में विजय है। कौन सी उस मर्यादा का उसने पालन किया जिससे आत्मा के अंतस का बल बढ़ गया। जैसे ही संकल्पों में पवित्रता आई, जैसे ही लेश मात्र भी मर्यादा का अगर पालन किया जाता है, तुरंत ही आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे ही मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है, आत्मा शक्तिविहीन होती है। जहां जहां श्रीमत का उल्लंघन होगा, जहां जहां ईश्वरीय मर्यादाएं टूटेगी, परिणाम में दंड मिलेगा। बाबा ने कहा है धर्मराज का दंड। धर्मराज की सजा कौन सी है, वह जो अंत में मिलने वाली है? नहीं, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, स्थिति का गिर जाना ही दंड है। क्या महावाक्य है? स्थिति का गिर जाना ही दंड है। अपने चित्त में इस बात को समालो। संगम युग पर यदि श्रीमत का लंघन होगा तो उसकी सजा यहां मिलेगी, और वो सजा है स्थिति का गिर जाना। स्थिति का गिर जाना अर्थात क्या? स्थिति का गिर जाना अर्थात सुबह उठो तो कोई उमंग नहीं, सुबह उठो तो परमात्मा प्यार से चित्त भरा हुआ नहीं है। स्थिति का गिर जाना अर्थात अशरीरीपन से कहीं दूर चले जाना। स्थिति का गिर जाना अर्थात आत्मा देह के, चेतना देह में बंध जाना, चेतना देह से बाहर न निकल जाना, निकल पाना। ऐसी निरीह अवस्था, ऐसी दुर्बल स्थिति आत्मा की जो है वह संगम युग पर दंड है। मुरली में रस न आना, मुरली सुनते समय नींद आना, मुरली सुनने की इच्छा न होना, मुरली पढ़ने की इच्छा न होना, एक एक महावाक्य का रसास्वादन न कर पाना, एक एक महावाक्य चिंतन में ना चला जाना, यह दंड है। कर्म करते हुए उदासी, कर्मों में सेवाओं में उमंग उत्साह नष्ट हो जाना, एक दूसरे से मनमुटाव होना, मनोमालिन्य उत्पन्न होना, कुछ भी करने का दिल न होना, बहुत सोने की इच्छा होना, उदास चित्त, मनोरंजन के जो साधन है उसमें रुचि उत्पन्न होना, टीवी देखने की इच्छा उत्पन्न होना, सीरियल देखने की इच्छा उत्पन्न होना, वीडियो देखने की इच्छा उत्पन्न होना, मैच ब्रह्मा कुमार कुमारों ने मैच देखना चाहिए या नहीं, क्या कहेंगे? देखना चाहिए। देखते समय जो एक्साइटमेंट उत्पन्न होती है, जो उत्तेजना उत्पन्न होती है, सोचो उसी उत्तेजना के क्षण में मरण घड़ी आ जाए, आत्मा देह से निकल जाए, तो किस स्थिति में आत्मा छूटेगी इस तन से, किसकी याद रहेगी वहां पे? ज्ञान याद है, योग याद है, परमात्मा याद है, सृष्टि चक्र याद है, या और कुछ? अधोगति को प्राप्त होगी आत्मा। इस भट्टी से लक्ष्य रखना है। जब माया ने देखा कि ये कुमार सिनेमा में नहीं जाते, सिनेमा हॉल में, तो माया ने अपना एक अंतिम, माया ने अंतिम चाल चली, सबके घर में टीवी रख दिया। परंतु जब माया ने देखा कि ये लोग टीवी भी नहीं देखते, तो हर एक के जेब में मोबाइल को डाल दिया। है किसी की मजाल जो इससे छूटे? कौन है जो इससे अछूता है? तो स्थिति का गिर जाना ये दंड है। नींद ना आना, नींद बहुत आना, दोनों ही उदासी के लक्षण है। खान पान में बहुत ज्यादा रस उत्पन्न होना, आज ये कल वो, आज यहां कल वहां, बहुत ज्यादा मनोरंजन के साधनों में आकर्षण उत्पन्न हो जाना, अंतर में एक रिक्तता उत्पन्न हुई है, ऐसी रिक्तता कि जिसे आत्मा भरना चाहती है इस संसार के खिलौनों से। परंतु अभी अभी अव्यक्त महावाक्य चले थे, अंतिम मुरली, अंतिम से पहले वाली, कि इस कलयुग में सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए यह असंभव है। और वो इच्छाओं का जंजाल जो है, उसमें ऐसे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां फंसते हैं। हम संसार के युवक और युवतियों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन आदर्श कुमार और कुमारियों की जिन्होंने परमात्मा को पाया, जिनके जीवन में बहुत बड़े बड़े त्याग है। ऐसा शायद ही कोई है कि जिसने त्याग नहीं किया। हरेक ने इतने बड़े बड़े त्याग किए हैं इस ज्ञान में आकर। अगर हरेक से कहा जाए अपनी जीवन कहानी लिखो, तो कितनी बड़ी कहानी हो जाएगी वो, और कैसी वो कहानी होगी वो आत्मचरित्र, कि जिसमें यह लिखा जाएगा कि इस दिन, इस समय, सृष्टिकाल में भगवान हमारा साथी बना। कैसी किताब होगी वो, कितनी श्रेष्ठतम किताब होगी वो। तो इस जीवन में, इस आदर्श जीवन में श्रीमत ही जिनका जीवन है। इस वाक्य को लिख लो अपने डायरी में कि इस ब्रह्मा कुमार जीवन में श्रीमत ही हमारा जीवन है। श्रीमत पर केवल चलना नहीं है, वरन श्रीमत ही हमारे रग रग में समाया हुआ है। गुजरात में बहुत सालों पहले एक डाकू हुआ जिसका नाम था जोगीदास खुमांग। एक रात वो सो रहा था और थोड़ी ही देर में छन छन की आवाज आई। उसने आसपास देखा, कोई नहीं। फिर से छन छन की आवाज आई तो देखा एक स्त्री वहां खड़ी है और वो स्त्री उसे कहती है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपके तेज और प्रताप के बारे में और आपकी बहादुरी के बारे में, मुझे आपसे स्नेह हो गया है और मुझे आपसे विवाह करना है। ये कौन था? डाकू। उसने कहा कि हमारी जो जमात है डाकुओं की, उसमें इस तरह के संबंध हम नहीं निभाते, क्योंकि हमारा ये जो प्रोफेशन है उसमें बहुत ज्यादा संयम की आवश्यकता है। अगर हम इस तरह के बंधनों में फंस गए तो हमारा ये जो धंधा बंद हो जाएगा। इसके लिए कृपा करो हे देवी, हे माता, मुझ पर रहम करो और मुझे छोड़ दो। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत ही मुश्किल से उससे वो अपना पीछा छुड़ाता है और दिखाया गया उसके जीवन में जब भी वो सोता है तो दो अंगरक्षक रखता है। किससे युद्ध, किससे सुरक्षा करने के लिए? उसे किसी दूसरा कोई डाकू से उसे डर नहीं है, परंतु वासना से डर है, विकारों से उसे डर है। उसी के जीवन में दिखाया है कि वो एक बार सुबह सुबह जा रहा है खेत से, तो एक दूसरी स्त्री वहां पर फसल काट रही है। उसे देखकर उसे आश्चर्य होता है कि इतनी सुबह और ये स्त्री अकेली इस बियाबान जंगल में। पूछता है ए लड़की, क्या तुझे भय नहीं लगता? और वो जो स्त्री जो वाक्य कहती है, जैसे ही वो सुनता है उस वाक्य को, उसका ही सीना छाती से गर्व से फूल जाता है। बताओ वो कौन सा महावाक्य कहती होगी? कोई गेस, कोई अनुमान? नहीं, जिसे उसको अपने ऊपर नशा चढ़ जाता है, वो कहती है, उसे तो वो जानती नहीं कि ये कौन है जो घोड़े पर सवार है। वो कहती है कि इस क्षेत्र में जहां हमारा भ्राता जोगीदास खुमांग है, यहां की बहु बेटियों को किस खाटर? तो एक डाकू भी यदि जीवन में संयम का पालन करता है तो धर्म भ्राता बन जाता है। एक डाकू भी यदि जीवन में संयम का पालन करता है तो क्या बन जाता है? धर्म भ्राता। तो वह आत्माएं जिसे आज की मुरली में बाबा ने कहा चैतन्य लाइट हाउस है, वो मास्टर बीज रूप है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसी आत्माएं, रूहानी ब्राह्मण, ऐसे साल्वेशन आर्मी, ऐसी गुप्त सेना, ऐसी जो संसार की चुनी हुई आत्माएं हैं, उनके जीवन में यदि संपूर्ण संयम आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस संसार में क्रांति घटित होगी। संसार में एक अवतार आता है, सारे जगत को हिला देता है। यहां कितने अवतार हैं? बाबा ने कहा तुम एक एक अवतरित हुए हो इस तन में। तो आज की मुरली, आज की इस भट्टी की शुरुआत हम आज की मुरली के वरदान से करेंगे। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ धारणा है क्या? पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ धर्म है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की नवीनता, नॉवेल्टी है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की पब्लिसिटी है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, ब्राह्मण जीवन की नींव, ब्राह्मण जीवन का आधार स्तंभ प्यूरिटी है। ब्रह्मा बाबा के पास यज्ञ के शुरुआत में कई सारे लोग आए और कहे कि आप अपने यज्ञ से यज्ञ इस पवित्रता को निकाल दो तो लाइन लग जाएगी यहां पर। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था? किसी को याद है वो उत्तर? बाबा ने कहा था मुझे कौन चाहिए? मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, कौन चाहिए? शेर और शेरनियां चाहिए, जो क्या कहे, धार लगाने वाली। कितना भी सहन करना पड़े, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी सामना करना पड़े दो, कितना भी साहस दिखाना पड़े तीन, कितना भी त्याग करना पड़े चार। आज की मुरली में ये चार मुख्य धारणाएं हैं। पहला, सहन करना पड़ेगा। इस पथ पर हम जहां निकले हैं ये साधारण मार्ग नहीं, अग्निपथ है। जिस मार्ग पर हम निकले हैं वहां पर कांटे बिछे हुए हैं, परंतु साथी स्वयं भगवान है। कदम कदम पर कांटे ही कांटे हैं, परंतु सर्वशक्तिवान अपनी सर्वशक्तियों के साथ हमारा साथी है। ब्रह्मचर्य को पालन करना संसार की आत्माओं ने, योगी तपस्वी और तथाकथित साधु संतों ने असंभव कहा है। एक जहरीले सांप कोबरा उसे वश में किया जा सकता है, परंतु काम को जीतना संभव है, ऐसा कहा है। समुद्र की जो लहरें उठ रही है उनको वश में किया जा सकता है, परंतु काम को जीतना मुश्किल है, ऐसा तपस्वियों ने कहा है। एक खूंखार शेर उसे भी वश में किया जा सकता है, परंतु काम को जीतना मुश्किल है। धधकती हुई अग्नि पर चला जा सकता है, परंतु काम को जीतना असंभव है। बाबा ने आकर कहा, पवित्रता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने आकर सबसे पहले वरदान दिया है, योगी भव और पवित्र भव, इस कुमार जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। एक है पवित्रता और एक है ब्रह्मचर्य। आज की इस भट्टी में मैं पवित्रता की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे केवल और केवल ब्रह्मचर्य की। वह आचरण जो ब्रह्मा समान हो, वह आचरण जो ब्राह्मी स्थिति में स्थित कराए, वह आचरण जो इंद्रियों की चंचलता से आत्मा को ऊपर ले चले, वह आचरण जहां कर्मेंद्रिया शीतल और शांत हो गई है, वह आचरण जहां कर्मेंद्रिया अपने विक्षिप्तता से मुक्त हो गई है, विक्षिप्त कर रखा है इन भोगों ने कर्मेंद्रियों को। जितना उसको भोगो उतना ही भोगने की आश और उत्पन्न होती है, और काम विकार का जो भोग है वो ऐसा भोग है, उसके लिए एक शब्द है दुष्पूर। दुष्पूर अर्थात कभी ना तृप्त होने वाली वासनाएं जो है वो दुष्पूर है। अगर हां एक बार भोग कर चित्त शांत हो जाता तो भी कोई बात है, परंतु जन्म जन्म आत्माओं ने इसे भोगा है, परंतु फिर भी अंत में अतृप्त। वासनाओं का जो स्वभाव है वो है अतृप्ति। इस वाक्य को लिखकर रखो अपनी डायरी में, इच्छाओं का स्वभाव है अतृप्ति। कितना भी संतुष्ट करो, सब कुछ करो, वो कभी ही तृप्त नहीं हो सकते। संसार में दो मार्ग बताए हैं, एक है भोग का मार्ग, एक है दमन का मार्ग। भोग का मार्ग कहता है कि भोगो, एक दिन सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। जितना भोगेंगे, भोगते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि फिर इच्छा नहीं होगी, परंतु होता कुछ और ही है। भोग भोग कर, भोग भोग कर वासनाएं और प्रदीप्त होती है, वो आग और भड़कती है। तो एक ये मार्ग है, दूसरे है, दूसरा एक और मार्ग है जो सन्यासियों ने अपनाया, वो है दमन का मार्ग, वो है इस संसार को छोड़कर चले जाओ, वो है द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी नरक का द्वार है, उसी से दूर चले जाओ। परंतु ये मार्ग कौन सा है? दमन का मार्ग है। दमन अर्थात सप्रेशन, जितना दबाओगे, ब्रह्मा कुमार नए नए ज्ञान में आए और आते ही महावाक्य सुना, काम महाशत्रु है आदि मध्यांत दुख देता है, सुनते ही वो दब गया, सोचा नहीं ये है क्या, किस तरह कार्य करता है, क्यों कार्य करता है, संसार की आत्माओं की क्या स्थिति हुई है। जो बाबा के महावाक्य है उसको हम बस सुन लेते हैं और वो दब जाता है, दमित भावनाएं फिर रह रहकर बाहर निकलती है, जैसे जैसे उन्हें उसी तरह का स्थान, उसी तरह का समय, उसी तरह का ट्रिगर, उत्तेजना मिलेगी, वो सुनामी की तरह बाहर आएगा, और ऐसा बाहर आएगा कि ज्ञान और योग के जो गांव बसा के रखे थे, और जो हम स्वयं को दिखा रहे थे हम तपस्वी है और योगी है, और हमारा वो जो दंभ था वो चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा ये सुनामी है। इसके लिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो हम कह रहे थे दो मार्ग है, एक है भोग का मार्ग और दूसरा है दमन का मार्ग। विदेश में पाश्चात्य जगत में एक फ्लैगिस्ट नाम के अमेरिका में सन्यासी हुए हैं। फ्लैगिस्ट अर्थात अपने हाथ में चाबुक रखते थे और जैसे ही विकार का संकल्प आया कि अपने आप को चाबुक से मारना चालू करते थे। वो तब तक मारते थे जब तक कि लहूलुहान ना हो जाए। पहले इस विधि ने काम किया कि जब भी विकार का संकल्प आया अपने आप को मारना चालू किया, लहूलुहान हो गए, परंतु धीरे धीरे परिणाम कुछ और हो गए। जब लहूलुहान हो गए तब वासनाएं और ज्यादा बढ़ने लगी, उल्टे परिणाम आने लगे, क्योंकि यहां भी क्या है, दमन सेपरेशन। जैसे कोई साधु है, आप कुंभ के मेले में जाओ तो देखोगे कि एक साधु पूरे शरीर में राख लगा लेते हैं फिर भी एक छोटा सा आईना अपने पास रखते हैं, वो किस लिए, ये कैसा त्याग है, ये कैसी तपस्या है, दमन हुआ है। एक व्यक्ति है करोड़पति है, अपनी सारी संपत्ति और जायदाद छोड़ दी, अखबार में लिख के आया और सन्यास ले लिया। 30 साल हो गए इस घटना को, पर उस समय जो अखबार में वो खबर छपी थी उसकी वो कटिंग अभी भी जेब में है, और जिस भी सभा में जाते हैं तो ये बात अवश्य कहते हैं कि मैंने करोड़ों की संपत्ति को क्या कर दिया, लात मार दी। एक बार सभा में से एक युवक ने पूछा, शायद लात ठीक से नहीं लगी। जहां जहां दमन होगा प्रचंड वेग से वासनाएं उठेगी, और ऐसी उठेगी अमृत वेला, मुरली, बाबा मिलन, सब कुछ बह जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा ने एक नया मार्ग बताया है, एक तीसरा मार्ग, एक बीज का मार्ग, और वो मार्ग है समझ, वो मार्ग है ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ। विकारों को दबाना नहीं है, दबाएंगे तो पागल कर देंगे, विक्षिप्तता आएगी। संसार में जितने मेंटल हॉस्पिटल्स है वहां पर जाओ और वहां के जो पागल है उनकी स्टडी करो तो पता चलेगा दमन हुआ है। 80% से भी ज्यादा जो पागल हुए हैं इसी दमित भावनाओं के कारण। तो आज की मुरली का जो वरदान है उसका जो सम्मान है, अभी ट्रैफिक कंट्रोल है तो इस ट्रैफिक कंट्रोल में एक श्रेष्ठतम सम्मान हम आपको दे रहे हैं। उसी समान में स्थित हो जाना है जो कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। जैसे ही आत्मा इस स्वरूप में स्थित होगी, कर्मेंद्रियों की जो पकड़ है और कर्मेंद्रियों की जो चंचलता है वह गिरेगी नीचे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में देखना है, चमकता हुआ सितारा। अभी 15 दिन पहले अस्पताल में जयंती बहन जी का एक क्लास हुआ था। उन्होंने उसमें एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया था। लंदन में एक भाई है बहुत ही अनन्य रतन बाबा का, कई वर्ष हो गए, 30 या 40 वर्ष हो गए बाबा के ज्ञान में चलते हुए, बड़ी बड़ी सेवाओं के जो निमित्त बने हैं। ऐसी आत्मा बहनों ने देखा कि कुछ दिन से सभी सेवाओं में रस समाप्त हो चुका है, कोई भी सेवा में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता, मुरली में आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। सेवा दी तो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो जयंती बहन को लगा कि इनको क्या हो गया है। उनसे एक बार बात की, कुछ ज्यादा बताया नहीं। फिर सोचा बात कुछ गहरी है, एक दूसरी छोटी बहन को कहा कि इनके साथ बैठकर तुम बात करो, क्या हो गया, 40 साल से अनवरत सेवा करते हुए, बड़ी बड़ी सेवाओं के जो निमित्त बने और सब कुछ किया, दिन रात जिसका बाबा ही सब कुछ है, ऐसा अनन्य कुमार अचानक क्या हो गया। वो बहन उस भाई के साथ बैठी, पहला दिन, दूसरा दिन, कई समय तक बैठी, पर उसने बताया नहीं। फिर एक दिन अचानक उसे आंसू आ गए और कहने लगा कि ये कब चालू हुआ मुझे पता नहीं चला, परंतु एक आदत पड़ गई। रात में लैपटॉप पर जब सेवाओं के लिए बैठता था, YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखने की, एक लिंक से दूसरा लिंक, दूसरे लिंक से तीसरा लिंक, और रात को देखते देखते कभी 1 बज जाता, कभी 2 बज जाता। धीरे धीरे आदत बढ़ती गई, धीरे धीरे ज्ञान और योग में रस समाप्त हुआ, धीरे धीरे सेवाओं में अरुचि का भाव उत्पन्न हुआ। परंतु उस भाई ने कहा, यह कब हुआ मुझे समझ में नहीं आया, पर अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं वश हो चुका हूं इसके। मैं जानता हूं, वो कहता था जब उससे बहनें पूछती थी कि क्यों तुम सेवा में अभी मन नहीं लगता, वो कहता था पता नहीं बाबा मेरे से अब कुछ कराना नहीं चाहता, बाबा ने मेरे से बहुत बड़ी सेवाएं तब कराई थी पर अब शायद मेरा पार्ट पूरा हो चुका है, पहले ये कारण देता था वो। और अब जब उसने ये बात कही तो उस बहन ने उसे बहुत समझाया। इसे कहा जाता है कैथारसिस, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैथारसिस अर्थात सब कुछ बाहर निकालना जो अंदर चल रहा है, पर्गेशन। जैसे कॉन्स्टिपेशन कब्ज किसको होता है तो लैक्सिटिव दिया जाता है ना, पेट साफ होने की दवाइयां, उसको कहा जाता है लैक्सिटिव्स। शब्द है लैक्सेशन, शब्द है पर्गेशन। पर्गेशन अर्थात अंदर में जो कुछ छिपा हुआ है उसको बाहर निकालना। और जैसे उसने वो बातें कही हल्का हो गया, फिर से वो उमंग जागा, फिर से थोड़ी हिम्मत आई कि बाबा को मुझसे बहुत कुछ कराना है और मैं किस मार्ग पर चला गया हूं। आत्मा को किसी ने आकर झकझोरा, जबरदस्त धक्का लगा एक, कहां ये दिग्भ्रमित हुआ चला जा रहा हूं, किसी ने दिशा को भ्रांत कर दिया है। विकार कब आते हैं, किस मार्ग से आते हैं पता नहीं चलता। योगियों के लिए माया भी योगी बनकर आती है, तपस्वियों के लिए माया भी तपस्वी बनकर आती है, श्वेत वस्त्रधारियों के लिए माया भी श्वेत वस्त्रधारी वस्त्र पहनकर आती है, और बैच लगाने वालों के लिए भी माया भी बैच लगाकर आती है। बलवान के लिए बलवान, महावीरों के लिए महावीर, दबंग के लिए दबंग, ऐसा माया का स्वभाव है, कोई छूटा नहीं है, चाहे अभी ज्ञान में आया है चाहे कितने वर्ष हुए हैं। हरेक की माया, क्योंकि माया नित्य दिन नए नए प्रयोग करती है। और माया को सबसे अधिक पसंद कौन है? जो कच्चे नए नए फल पत्ते होते हैं ना, जैसे कल की संडे की मुरलियों में नए जो बच्चे आए हैं उनसे मुलाकात, उसमें बाबा ने कहा है नए बहुत लाडले होते हैं, क्योंकि वो जो नए पत्ते होते हैं वो चिड़िया को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठे होते हैं। इसके लिए प्रश्न है हर एक को जो अपने आप से पूछना है कि मेरे जीवन में, ये प्रश्न लिख लो, आज की तारीख में इस समय कौन सी वो माया है जिससे मैं अब तक छूटा नहीं हूं, कौन सा वो संस्कार है जिससे मैं अब तक छूटा हुआ नहीं हूं, कौन सा वो आदत है जो अभी भी अगर आ जाए तो सब कुछ बहा ले जाती है, कौन सा संस्कार, कौन सा संकल्प, कौन सी आदत और माया का वो कौन सा रूप है। अपने शत्रु को कम नहीं समझना, पहले वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो दिखने में कैसा है। तपस्वी कुमारों को माया कभी सामने से नहीं आती है, वो दिखाए ना। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? मेनका ने भंग की थी, पर उसके पहले इंद्र रंभा को भेजता है, पर रंभा डायरेक्ट अटैक करती है, डायरेक्ट उसे मोहित करने का प्रयत्न करती है, तो उसे शाप दे देता है और वह शिला बन जाती है। इसके लिए जो दिखाया है मेनका जो है वो उसे प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं करता, उसकी सेवा करती है, कई मास तक सेवा करती है, उसके लिए जल लाती है, फूल लाती है, भोजन लाती है, फल लाती है, सब कुछ करती है, कभी कुछ कहती नहीं है। फिर उधर से आकर्षण चालू होता है, पहला जो आकर्षण था वो तो सीधा सीधा था, वो तो वहां पता पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, यह जो आकर्षण था सूक्ष्म था। तो इस बात पर केवल आज नहीं, आज से चिंतन करना है, मेरे जीवन में कौन सी माया है और मैं क्या उसके स्वरूप को पूरा जान चुका हूं और उसे मैं कैसे नष्ट करूं, मेरे ज्ञान योग में कौन सी कमी रह गई है। तो ये सब बात हम कर रहे थे दंड की। संसार में जो दो स्वरूप है, काम को जीतने के उसकी और बाबा ने जो काम बताया, बाबा ने जो मार्ग बताया है उसकी। तो बाबा ने जो मार्ग बताया वो है समझ का मार्ग, ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ। फिर से आज के वरदान में आते हैं, तो ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। किसी भी परिस्थिति में इस धारणा के लिए चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, सबसे पहला पॉइंट है सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। क्यों सहन करना पड़ेगा? और जब हम सहन करते हैं तो कौन से संकल्प मन में हो? सबसे मुख्य संकल्प जो बाबा ने एक 95 की मुरली में दिया है, जब भी आपको सहन करना पड़े ये सोचकर सहन नहीं करो कि मुझे ही सहन करना है, मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है। क्या संकल्प करना है? कल की जो मुरली है संडे की, इसी बात पर हम फिर कल चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार से। कल की मुरली में बाबा ने अव्यक्त वाणी जो है उसमें इसका वर्णन किया है, पर एक मुख्य बात जो है मैं यहां कह रहा हूं वह है, आदेश किसने दिया है तुम्हें सहन करने का? ये नहीं कि दूसरे समझ रहे हैं मैं तो गलत हूं, हम क्यों सहन करें, हमेशा हम ही सहन करें। यहां संकल्प कौन सा करना है? ये आदेश स्वयं भगवान का है। कल की मुरली में बाबा ने कहा है, ये ना समझो, ये ना सोचो कि दूसरे क्या कहते हैं। अरे दूसरों के कहने से क्या कहता है, क्या होता है, बाप की लिस्ट में नंबर तुम्हारा आगे है। तो जो भी कुछ सहन करना पड़े इस मार्ग में, पवित्रता का मार्ग चुना है, पवित्रता की राह पकड़ी है, इस पर पग पग पर तूफान है, पग पग पर कठिनाई है, धधकती हुई अग्नि का ये मार्ग है, इसमें पैरों में छाले आएंगे, बहुत बार गिरेंगे, परंतु जब जब गिरना फिर से दोबारा उठना, इसी में महानता है। जब गिरो फिर से उठो, और जहां से उठो फिर से नया मार्ग, क्योंकि अब तुम्हारे पास अनुभव है। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहली जो धारणा बताई बाबा ने वो क्या कहा, कुछ भी सहन करना पड़े सहन करो। दूसरा, कुछ भी सामना करना पड़े, कितना भी सामना करना पड़े, बड़े बड़े पेपर आएंगे, एसिड टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी शब्द है, एसिड टेस्ट कहा जाता है इसमें, बड़े बड़े पेपर, और जब तक पेपर जीवन में नहीं आएंगे कौन कहेगा तुमको विजयी। संसार में इतने सारे सम्राट हुए हैं, सम्राट अशोक एक सम्राट हुआ है, उसके जीवन को देखो, कितनी सारी कठिनाइयां सहन की। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को देखो, जब से जन्म लिया और अंत तक केवल कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ा, परंतु जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करा किया वही इतिहास में अमर हुए। संसार में न मालूम कितने राजा हुए, उनका कहीं नाम निशान नहीं, बहुत बड़े बड़े राजा होंगे, सफल भी होंगे, परंतु जब तक जीवन में कठिनाइयां नहीं, समस्याएं नहीं, तब तक हम महान नहीं बनते, परिपक्वता नहीं आती है। आज बहन जी ने मुरली का जो लक्ष्य एक बताया, कौन सा है, भट्टी से क्या होता है, परिपक्व बनती है आत्मा, तपती है। तप शब्द का अर्थ क्या है, जलना, संस्कृत से लिया गया शब्द है तपश्चर्या, हिंदी में तपस्या, संस्कृत में तपश्चर्या, तप अर्थात जलना, जलना अर्थात जब लकड़ी होती है जितनी सूखी होगी उतनी वो तेज जलेगी, उसमें अगर पानी है तो धुआं ज्यादा निकलता है। वासनाओं का पानी जब तक आत्मा में है धुआं ही धुआं है, इतनी वह नहीं जलती। अग्नि को तेज करो, अग्नि को प्रचंड करो, अग्नि को प्रचंड प्रज्वलित करना। इस भट्टी का एक लक्ष्य यह भी है कि अपने अंदर जो वैराग की भावना है, आज यज्ञ में कहीं पर भी वैराग की चर्चा नहीं, बहुत कम चर्चा है, बहुत कम, त्याग बहुत कम चर्चा है, ब्रह्मचर्य की चर्चा बहुत कम है, संपूर्ण प्यूरिटी की चर्चा है, ब्रह्मचर्य की चर्चा कम है। यज्ञ भी एक ऐसे मोड़ पर आया है कि सेवाओं का था विस्तार हो चुका है, कौन किसको संभालेगा, कौन किसको श्रीमत देगा, इसके लिए सामना करना, प्रतिज्ञा करके जाना है कि अब इस मार्ग पर निकल पड़े अब पीछे नहीं हटेंगे, चाहे ब्रह्मा भी आकर कह दे क्या। जिस पथ पर हम निकल पड़े हैं वही सत्य है। इस संसार में दो मार्ग है, एक है संसार का मार्ग, एक है अध्यात्म का मार्ग, दोनों ही मार्ग पर जलना है, दोनों ही मार्ग पर तपना है, किसी ने उस मार्ग को चुना है, किसी ने इस मार्ग पर चुना है, परंतु एक मूलभूत फर्क है। संसार का जो मार्ग है उसमें भी जलना है, उसमें जल जल के जल जल के जल जल के आखिर में राख रह जाती है। अध्यात्म का मार्ग जिन्होंने चुना है उसमें भी जलना है, ऐसे मत समझना कि ब्रह्मा कुमार या कुमारी बन गए तो जलना समाप्त, यहां तो शायद ज्यादा ही है। हमारे जन्म जन्म के दुश्मन इसी ब्राह्मण परिवार में आए हैं, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के ही साथ है, ब्राह्मणों को अपने हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुक्तु करने हैं। सतयुग त्रेता में भी हम साथ थे, द्वापर कलयुग में भी हम ही साथ थे, हमारे हिसाब किताब हमारे लौकिक जो ज्ञान में नहीं है या लौकिक की जो आत्मा है उनसे नहीं है, ज्यादा हिसाब किताब किससे है, इसी जिसका हमने जब हम कभी राजा होंगे और किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया होगा, कोई किसान होगा बेचारा मर गया पूरा परिवार नष्ट होगा, अभी वो हमारा फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं आएगा, कहीं तो इंचार्ज बनेगा, नहीं तो साथी बनेगा या तो जूनियर बनेगा। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में वही सारे लोग हैं, जो हमारे जन्म जन्म के हिसाब किताब वाले आ चुके हैं, छोड़ेंगे नहीं हमको। इसके लिए एक मुख्य बात जो ध्यान रखनी है, इस ब्राह्मण परिवार के लिए बाबा ने जो कहा है, सामना तुम्हें ब्राह्मण परिवार से नहीं करना है, माया का सामना करना है। प्रभु परिवार हिसाब किताब चुकतू होने हैं, वो तो होंगे, परंतु एक मुख्य और बहुत ही सूक्ष्म बात है कि नए हिसाब किताब तैयार नहीं करने हैं, फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करना है, जो है वो है। अगर कोई अत्याचार कर रहा है, हमको अगर लगता है, वैसे तो न्याय ड्रामा न्यायकारी है, परंतु किसी भ्रांतिवश हम यह सोचते हैं कि मेरे ऊपर ही अत्याचार होता है, हमेशा मुझे ही दोषी ठहराया जाता है, हम इतनी सेवाएं करते पर हमारा कहीं नाम नहीं हो रहा है और जो सेवाएं नहीं करते उनका नाम ज्यादा हो रहा है, हमें ही हमेशा पीछे रखा जाता है, ऐसा क्यों? बात समझ लो, यह ड्रामा विविधतापूर्ण है, यह ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, इस ड्रामा में सभी निर्दोष है, केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। कैसे है सभी? केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। हमने जन्म जन्म आत्माओं को सताया है तो वो भी तो आएगी हमें सताने, छोड़ देगी ऐसी? ऐसे हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे? कुछ हिसाब किताब आत्माओं के द्वारा, कुछ हिसाब किताब शरीर की बीमारी द्वारा, कुछ हिसाब किताब प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा चुकते होने हैं, और कुछ हिसाब किताब तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा। इसके लिए जब जीवन में कोई परिस्थिति नहीं है, वही समय है जब हम अपनी योग की स्थिति को ऊपर ले जाए, अपने योग को शक्तिशाली बनाए। अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं आज कहूं कि 10 दिन के बाद जितने कुमार यहां बैठे हैं, हरेक को उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आनी है जो आज तक आई नहीं, और वो उसके जीवन की सबसे भयंकर महाप्रलयंकारी परिस्थिति होगी, तो दत्ता भाई आज से क्या करेंगे? अगर आपको कहा जाए कि 10 दिन के बाद एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है, तो आज का टाइम दिया हुआ है आज से 10 दिन, क्या करेंगे? क्या करने लग पड़ेंगे? प्रफुल्ल भाई क्या करेंगे? विनय भाई, राहुल भाई, आज से आपको बताया जाए कि 10 दिन के बाद एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि जिसमें जिनको तुमने साथी समझा वो साथ छोड़ देंगे, जिनको तुमने अपना समझा वो पीछे हट जाएंगे, जिनके लिए कहा कि ये हमारी मदद करेंगे पर मदद नहीं करेंगे, ऐसी परिस्थिति आने वाली है तो क्या करेंगे? साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा अध्यात्म की परम अवस्था है, वो परिणाम है। स्वयं को प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे? स्वयं को तैयार करेंगे, स्वयं को तैयार करना है, स्वयं की स्थिति को तैयार करना है। इस यज्ञ में सबसे आगे कौन है? वह आगे नहीं है जो भाषण दे रहे हैं, वह आगे नहीं है जो स्टेज पर है, वह आगे नहीं है जो यहां वहां घूम रहे हैं, यह वह आगे नहीं है जो कोर्स करा रहे। इस यज्ञ में, इस परमात्म यज्ञ में आगे वह है जिसकी स्थिति आगे है। किसके पास ज्ञान कितना है वो भी गौण है, किसने कितनी सेवाएं की वो भी एक तरफ, अशरीरीपन के अभ्यास से, योग की धूप से स्वयं को जिसने जितना तपाया है वही आगे है। और कौन मदद करेगा हमारी? क्या इस संसार में कोई किसी की मदद कर सकता है? सोचो, हमारा कोई संस्कार है, नहीं जा रहा है, या कोई आदत है, थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, परंतु कार्य तो हमें ही करना है। इस ड्रामा में आत्मा का आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है, हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। ये सौभाग्य है कि जीवन की इस धारा में परमात्मा साथी बना है। तो सामना करना, यह दूसरी धारणा आज के वरदान में बाबा ने कही है, सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना है, उसके लिए स्वयं को परिपक्व बनाना है, स्वयं को तैयार करना है, स्वयं की योग की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, स्वयं को ज्ञान से संपन्न बनाना है। दो दिन पहले एक वरदान था, ज्ञानी तू आत्मा कौन है और कौन नहीं है, याद है बाबा ने कहा था ज्ञानी तू आत्मा अर्थात तीन बातें, जो ज्ञान में समाया हुआ है एक, दूसरा जो ज्ञान सागर में समाया हुआ है, तीसरा इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है क्योंकि सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसको बाबा ने कहा था ज्ञानी तू आत्मा। क्या हमने स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न किया है? क्या संगम युग के जो सुहेज है, संगम युग में जो प्राप्तियां हो रही है, क्या हमने उन प्राप्तियों को जीवन में धारण किया है? उत्तर होगा नहीं, नहीं किया है, करना बाकी है। जब नहीं उत्तर आएगा उसके बाद में फिर वो प्रक्रिया चालू होगी कि अब करना है। हम वैसे ही स्वयं को ठग रहे हैं कि हमने स्वयं को बहुत आगे बढ़ाया है, पर वास्तव में सोचो कि बहुत बड़ी परीक्षा आ जाए जीवन में, जब परिस्थिति है ही नहीं जीवन में, तब भी बुद्धि में परमात्मा याद और परमात्मा ज्ञान नहीं है, सोचो जब परिस्थिति आ जाए तो क्या होगा? इसके लिए जो उत्तर कहा, स्वयं को तैयार करना है, और वो तैयारी आज के दिन नहीं, आज के दिन के लिए नहीं, आज से ये आगाज है उस तैयारी का, सूत्रपात यहां से होगा उस तैयारी का, आज से स्वयं को तैयार करना है। तो दूसरा पॉइंट था सामना करना, तीसरा था साहस। जैसे कहा ये अग्निपथ है, यहां किस चीज की आवश्यकता है? साहस की आवश्यकता है, गिर जाने के बाद फिर से उठने की साहस, फिर से उठने का साहस चाहिए, वह है साहस। एक बार गिरे अब उठो और फिर चलो। अगर साहस है, अगर हिम्मत है तो क्या हमेशा मुरलियों में आता है ना, बाबा की मदद है। बाबा की मदद वैसे नहीं मिल सकती अगर हिम्मत नहीं है तो। तो तीसरा पॉइंट ये था, और चौथा जो पॉइंट है वो कौन सा है? त्याग। जैसे मैंने कहा हम सभी ने अपने जीवन में बड़े बड़े त्याग किए हैं, परंतु हम अपने ही त्याग को भूले हुए हैं। सोचो उस दिन को याद करो, क्यों हम बाबा के पास आए थे, कौन सी उमंगे थी हम बाबा के पास आए थे, और अब कहां आ गए? क्या मैं इसलिए बाबा के पास आया था कि क्रिकेट की मैच देखूं? क्या मैं इसलिए बाबा के पास आया था कि विज्ञान के जो संसाधन है उसमें खो जाऊं? क्या मैं इसलिए बाबा के पास आया था कि विलासितापूर्ण जो जीवन है उसको अपना लूं? किस लिए बाबा के पास आए थे हम? स्वयं स्वयं से ये प्रश्न पूछो आज, मैं बाबा के पास क्यों आया था? जिस लक्ष्य को लेकर आया था, क्या वो लक्ष्य अभी भी स्मृति में है? लक्ष्य कहीं भूल तो नहीं गया? लक्ष्य कहीं जीवन की इस दौड़ में खो तो नहीं गया? कितना धुआं ये छाया है व्यर्थ का, विकारों का, नकारात्मक का। तो नकारात्मक भावनाएं वहां आ गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों आए थे? आए थे बहुत उमंग था, आए थे तो शक्तिशाली अमृत वेला करते थे, मुरली का चिंतन करते थे, दिन रात सेवाएं करते थे, और अब पता नहीं क्या हो गया, क्यों ये उमंग उत्साह खो गया और कहां खो गया, क्यों ये आकाश में धुआं सा आ गया है? इसके ऊपर चिंतन करना है। तो स्वयं के त्याग को याद करो, हमने क्या क्या त्याग किया है, हमें क्या क्या त्याग करना है आज की मुरली से, खुशी खुशी से, मर मर के नहीं, दब दब के नहीं, दमन की का सिद्धांत अपना कर नहीं, दमन करोगे तो निकलेगा बाहर, समझ कर अपने जीवन में ऐसी संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है। चारों ही बातें उसमें आई है और यह पवित्रता हमारे जीवन की श्रेष्ठ धारणा है।